श्रीगुरो न वैष्णव च जातम सगणा रघुनाथ नित्यं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादनं सगणा ललिता श्री विशाखानुत्यासं नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुवेश्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रत्येक दिन की भांति भगवद गीता कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो हम आज भगवद गीता के ऊपर चर्चा करेंगे, दूसरा अध्याय है और श्लोक क्रमांक है 36। तो भगवत कहा गया है कि जो भगवद गीता है सर्व उपनिषद गावो गोपाल नंदनो, सारी उपनिषद का जो सार है वो भगवद गीता है। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का सारे उपनिषद का सार लेकर दिया है भगवद गीता को। तो और भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाला बनकर की और अर्जुन को बछड़ा बनकर करी उपनिषद का सारी सार भगवद गीता का सारी सार हम अर्जुन के माध्यम से हमको सबको प्राप्त हुआ है ये भगवद गीता का ज्ञान। इसीलिए बहुत सुंदर मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ ये भगवद गीता के ज्ञान को, और हर कोई पढ़ना चाहिए। और खास करके जो हमारा वयस्क है माता पिता है तो अपने बच्चे को जैसा छोटे बच्चे को कुछ टीका दिया जाता है, कुछ शरीर अच्छा रहे संक्रामक रोग ना हो, उसी प्रकार भगवद गीता जो ये जो ज्ञान है सबको देना चाहिए, क्योंकि ये देने से सदाचार शिष्टाचार और आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा, तो उससे आगे मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। तो हम भगवद गीता देखेंगे। भगवद गीता जो है तो भगवान श्री कृष्ण ने जो पहला अध्याय में जो बताया युद्ध ना करने का पांच कारण बताया। पहले कारण यह था करुणा, कि अगर मैं उनको बाण चलाऊंगा तो बद करूंगा, तो इसे उनके प्रति करुणा था कि दूसरे को तकलीफ नहीं देना चाहते थे। जो भक्त होता है भगवान कृष्ण के परम भक्त होता है साधु होता है और दूसरे को तकलीफ नहीं देना चाहते, तो ये अर्जुन भक्त होने के नाते दूसरे को कष्ट नहीं जाते, इसलिए करुणा पहला क्या उनके हृदय में करुणा उत्पन्न हुआ। क्योंकि विवहित पुतना मुखम निरीक्ष स्वजन बदात विमुखश्च दोष बुद्धिया, जब भगवान कृष्ण अपने दोनों सेनाओं के विराथ लेकर रखे तो भगवान कृष्ण ने डायरेक्ट लेकर के पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने रथ रखे, क्योंकि उनके माध्यम से हमको सारी को भगवत गीता देना चाहते हैं। क्योंकि अर्जुन तो भक्त था लेकिन अपने योग माया के द्वारा ये शिक्षा दिए कि कैसे उनके मोह दिए और मोह के द्वारा मोहित होने के बाद भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान संदेश देंगे। तो पहले करुणा था, और दूसरा क्या था विषय भोग, कि अगर मैं सारी जितना राजा सैनिक सबको बध कर देता हूं तो फिर जीवित रहने के लिए क्या आवश्यकता है। अगर सारे लोग मर जाएंगे तो कैसा भोग करेंगे, संसार में तो कोई तो होना चाहिए ना, अभी घर में कोई नहीं अकेले तो क्या भोग करेंगे, तो पत्नी होना चाहिए बच्चे होने चाहिए सब ये सब होना चाहिए। तो ये कर, और दूसरा क्या था कि पाप का डर, अगर मैं उनको बध करता हूं तो पाप लगेगा, तो इसीलिए पाप लगेगा इसके कारण भी मना करे थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो और दूसरा क्या था कि कुल का विनाश, चौथा कारण था कि कुल का विनाश, कि अगर मैं सारी राजा और सैनिक को बध कर दूंगा तो क्या होगा, सारी स्त्रियां विधवा हो जाएंगे, जब स्त्रियां विधवा हो जाते हैं तो वर्ण संकर पुत्र उत्पन्न होगा, इसलिए बोले कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और पांचवा था और निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि युद्ध में मेरे को क्या करना चाहिए, ये पांच कारण है। तो भगवान भगवद गीता में पांच कारण अर्जुन युद्ध ना करने का पांच कारण ये बताए भगवद गीता में। तो भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन ने जब शरणागति हुआ, कार्पण्य दोष पहतो स्वभाव पुच्छामि तुम धर्म समूढ़ चेता ये श्रेय चाने सित बोई तन में शिष्य हम साधि माम तो उपन्नम। तो इसमें भगवान बोले, अर्जुन बोले कि मैं आपने कृपण और दुर्बलता के कारण मेरा धैर्य खो चुका हूँ, मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे लिए क्या श्रेय है, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं शरणागति हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। तो ये हम बहुत बड़ा शिक्षा मिलता है अर्जुन, जब तक हम शरणागति नहीं होंगे भगवान के प्रति गुरु के प्रति तब तो हम अच्छी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए पहले शरणागति बताया गया। तो जो ये जो बताया गया तो भगवान श्री कृष्ण ने हस्ते तमुबाच हृषिकेश पहर्षनी व भारत, संजय ने धृतराष्ट्र को बोले कि तमुबाच हृषिकेश पहर्षनी व भारत, कि भगवान हंसते हुए माने ये शब्द कहे, क्या कहे भगवान बताए, पहले बोले कि करुणा, जो बोले कि अर्जुन का पास जो करुणा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उस करुणा की वजह से भगवान ने आत्मा और शरीर के भेद को बताए। आप 11 श्लोक दूसरा अध्याय के 11 से लेकर के 30 तक आप देखेंगे आत्मा क्या है शरीर क्या है, शरीर नश्वर है और आत्मा शाश्वत है, इसीलिए भगवान ने बताया न असते विदते भाव न भाव विदते सत उभे अंत तो दृष्टांत तू अन्य तत्वदर्शी भी। तत्वदर्शी ने ये निष्कर्ष निकाला कि शरीर का जो कोई चिरस्थाई नहीं है, यह शरीर का कोई चिरस्थाई नहीं है, जहां तक आत्मा है वो शाश्वत है नित्य शाश्वत पुराण न हन्यते हन्य माने शरीर, शरीर मारे जाने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होता। इसे देही नाम अस्मिन यथा देह कुमार जौवन जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर से तत्र नोमियाति। जिसी प्रकार एक छोटे बालक होता है, बालक से यौवन अवस्था, यौवन से बुद्ध अवस्था, तो ऐसा अग्रसर होता है, लेकिन जब शरीर छूट जाता है तो आत्मा नष्ट नहीं होता है। तथा देहांतर प्राप्ति, यह देहांतर होता है धीरस्थ तत्व, जो धीर जो ज्ञानी पुरुष है, जो शास्त्र चक्षु है, मतलब शास्त्र द्वारा प्रशिक्षण किया गया है, जो जानता है वो कभी मोहित नहीं होगा। तो ये शरीर और आत्मा के बारे में बताए भगवान, जो अर्जुन जो बता रहे थे किसके माध्यम से, शरीर के लेवल पर बता रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और भगवान ये बता रहे कि आत्मा है, कि आत्मा नष्ट नहीं होता है। मैं बोल रहा हूँ कि आपको युद्ध करो, क्योंकि आप मेरे अंश है, माँ में अंश जीव लोके जीव भूत सनातन, आप मेरे अंश है और अहम विजय प्रद पिता, भगवान बोलता है कि मैं सारे जीवों का मैं ही पिता हूँ, अहम विजय प्रद पिता, मैं ही पिता हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि आप आत्मा है, आत्मा होने का आप नष्ट नहीं होंगे, आपका जो स्वधर्म है क्षत्रियों का जो स्वधर्म है युद्ध करना है, आप युद्ध करो। तो ये बता रहे, और हम देखते हैं कि जो शरीर है ये 24 तत्वों से बना हुआ है, महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्त बच इंद्रियाणि दशैकम च पंच च इंद्रिय गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगात चेतना द्युति एततो क्षेत्रम समासेत सविकार उदातम। एततो क्षेत्र समासेत, पांच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पांच कर्म इंद्रिय, पांच ज्ञान इंद्रिय और पांच इंद्रिय विषय और मन बुद्धि अहंकार और महातत्व, ये 24 तत्व से शरीर बनाए। जैसा पांच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पांच कर्म इंद्रिय हाथ पैर वाणी गुदा लिंग, और पांच कर्म इंद्रिय, कर्म इंद्रिय क्या है, कर्म इंद्रिय क्या है, कान का, पांच ज्ञानेंद्र क्या है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, ये पांच ज्ञानेंद्र, और पांच इंद्रिय विषय, जैसा आंख का कार्य है देखना, कान का कार्य है सुनना, और जीभ का कार्य है स्वाद लेना, और नाक का कार्य सुगंध क्या है दुर्गंध क्या है वो भी जानकारी मिलते हैं, और त्वचा का कार्य है कैसा ठंडा क्या है गर्म क्या है आपको अनुभव बताएं। तो ये जो 24 तत्व से ये शरीर बना है, और जो आत्मा है और कभी नष्ट नहीं होता है, और शरीर में रहते हुए भी नष्ट नहीं, जिस प्रकार वायु कीचड़ में रहता है फिर भी शरीर से कीचड़ में रहता है, वायु कीचड़ में स्पर्श नहीं करता है, उसी प्रकार हमारा शरीर में जो आत्मा रहता है वो शरीर में स्पर्श नहीं करता है, प्रभावित नहीं होते है। तो इसलिए 24 तत्व से ये शरीर बना है, जहाँ तक आत्मा है वो नष्ट नहीं होता है। तो एक बार जनक महाराज ने एक मीटिंग किए थे कि मैं एक पैर घोड़ा के ऊपर रखूंगा, दूसरा पैर फिर दूसरे पैर रखूंगा, उतना समय में मेरे को ये आत्मा ज्ञान की दो, आत्मा ज्ञान की इतना समय में दो। कितना समय? 2-3 सेकंड में। तो एक बार सारे ऋषियों को बुलाया गया, कोई कौन आत्मा ज्ञान देगा। तो उसी समय अष्टवक्र ऋषि आए थे, अष्टवक्र मुनि तो उधर आए थे। तो उसको देख करके सारे जितना भी जो मंत्री बैठे थे तो हंसने लगे, सब लोग हंसने लगे, क्योंकि अष्टवक्र जो है वो 8 प्रकार के टेढ़े, मतलब उनका शरीर, हाथ, पैर, कान सब टेढ़े हैं। तो उसको देख करके हंसने लगे। तो फिर अष्टवक्र ने जनक महाराज को बोला कि ये चामर और चांडाल को क्यों रखा है, क्यों बैठा है? तो बोलता है ये तो मंत्री है, ये चांडाल कैसा है? बोलते ये जो मेरा चमड़ी और हड्डी और मांस को देख कर हंस रहा है, उसको पता नहीं है कि आत्मा नष्ट नहीं होता है, आत्मा ही शाश्वत रहता है, ये तो सारी चीज नष्ट हो जाएगा, लेकिन उसको पता नहीं है कि ये शरीर नष्ट होने वाला है, और चमड़ी हड्डी तो रक्त मांस हाड़े से बना हुआ है, तो ये तो नष्ट होगा ही। तो इसीलिए तो फिर बोले ठीक है, मैं अभी आपको आत्मा ज्ञान की बताने वाला हूँ। तो जब बोले कि अष्टवक्र बोले कि ठीक है, घोड़े के ऊपर एक पैर रखो। तो जब रखने जा रहे थे तो उसी समय बोले, क्या बोले कि पहले दक्षिणा दो। बोले आप ज्ञान प्राप्त करना तो दक्षिणा देना पड़ेगा ना, तो बोले दक्षिणा दो। बोले दक्षिणा क्या है? बोले कि ठीक है मेरा राज्य दे देता हूँ। बोलता है राज्य? आपका कब से राज्य हो गया? उसका पहले किसका था? बोले कि मेरा पिताजी का था। जनक महाराज बोले कि मेरा पिताजी का था वो राज्य। अच्छा, आपका पिताजी था, फिर उसके बाद फिर किसका होगा? मेरे बेटे का होगा। तो फिर आपका कैसे हो गया? तो आप कैसे मेरे को राज्य दोगे? के राजा के आके भी चला गया ये राज्य को छोड़ करके, फिर दूसरा आके राज्य करने लगा, तो उसके बेटे को राज्य मिलेगा। तो बोले कि आपका राज्य फिर कैसा होगा? तो इसलिए बोला ठीक है, अगर मैं राज्य नहीं दे पाऊंगा तो मैं शरीर देता हूँ। अच्छा, ये शरीर किसका है पूछ लीजिए। तो जब पूछने गए तो वो बोले कि जाओ पूछो अपनी पत्नी से। बोलते ये पत्नी बोले कि ये शरीर तो मेरा है, तो आपका कैसा? बोलते ठीक है। इसी प्रकार मनुष्य शरीर जो धारण मनुष्य शरीर मिला है, तो कई लोग अलग अलग सोचते है। कभी अगर ऑफिस में जाएगा तो ऑफिस के जो मालिक है तो वो सोचता है कि ये मेरा शरीर है, मैं उस शरीर के द्वारा कुछ कार्य करूंगा, और पत्नी भी सोचता है कि ये पति का शरीर जो मेरा है। तो बहुत सारे लोग अलग अलग सब बताते हैं, लेकिन वास्तव में हम जीवर स्वरूप है कृष्णा नित्य दास, कि हम भगवान के नित्य दास है। तो ये शरीर जो न जायते मिजते वा कदाचि, नायम भूत्वा भविता न भयो, अजो नित्य शाश्वत पुराण न मान्यते अन्यमाने शरीरे, न जायते मिजते वा कदाचि। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है और आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता है। न जायते, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम गलदान्तोप, न शाश्वति मारुत, कि जो आत्मा को कई अस्त्र के द्वारा खंड खंड नहीं किया जा सकता है, और जल के द्वारा भिगा नहीं सकता है, और हवा के द्वारा भी सुखाया नहीं जा सकता है। तो शरीर मारे जाने पर भी आत्मा शाश्वत ऊपर रहता है। तो जो 24 प्रकार के जो शरीर से जो शरीर बना है, जो मन बुद्धि अहंकार इंद्रिय, इसके द्वारा जो विषय भोग करने के कारण हमको अलग अलग शरीर प्राप्त होता है। जैसा कि भगवद गीता में भगवान 13वां अध्याय में 22 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, पुरुष प्रकृति ही भूके प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संघर्ष सद असत जनि जन्म छ। पुरुष प्रकृति ही भूके प्रकृति जान गुणान। पुरुष जब जीवात्मा एक भौतिक संसार को भोगने की इच्छा करता है, पुरुष प्रकृति भूके प्रकृति जान गुणान कारण गुण संघर्ष, उसका कारण क्या है? सद असत जनि जन्म छ। जब संसार में हम भोगने की इच्छा करता है तो क्या होता है? अलग अलग योनि मिलता है। कारणम गुण संघर्ष सत असत योनि जन्म सो, सत असत, कोई देवता का शरीर मिलता है, कोई पशु का शरीर मिलता है, और कोई वृक्ष का शरीर मिलता है, ऐसा अलग अलग शरीर प्राप्त होता है। इसलिए भगवत गीता में क्या बोले भगवान ने, मामे बांस जीव बोलो के जीव अवतर सनातन मना सष्टानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर सती, कि जो इंद्रिय है और मन के साथ घोर संघर्ष कर रहे हैं, जब तक हम विषय भोग करते रहेंगे तब हमको अलग अलग शरीर प्राप्त होते रहेगा। इसलिए शरीरम यद उपावती यत च उत्क्रमात ईश्वर गृहित तथा निशयंती वायु गंध निवास। जीवात्मा क्या करता है, जब शरीर को भोग करने की इच्छा रखता है उसको एक शरीर से दूसरे शरीर उसी तरह ले जाता है, जिस प्रकार एक पुष्पक के जो पुष्प रहता है पुष्पक को जो सुगंध को वायु किसी तरह लेके जाता है, उसी तरह जैसा एक फूल तो वहां पर रहता है लेकिन हमको सुगंध के अनुभव होते है, सुगंध के द्वारा अनुभव होते है कि कितना सुगंध है, तो उसी प्रकार शरीर तो पड़ा रहता है लेकिन उसके साथ जो आत्मा है वो आत्मा निकल जाता है और दूसरा शरीर में प्रवेश करता है। उसी प्रकार क्षोत्रम चक्षु स्पर्शन च रसनम ग्रहण एव च अधिष्ठाय मनसयम विषयानुपशेवते, उसको अलग अलग शरीर प्राप्त होता है, अलग आँख कान नाक जीभ त्वचा ये सब प्राप्त होता है। मनस्तान इंद्रियानि बोलो मन के साथ जो पांच इंद्रिय है उसके द्वारा फिर दूसरा शरीर प्राप्त होता है और दूसरे शरीर से वो भी भोग करता है। जब तक कोई ब्रह्मांड भ्रमित है कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्णा प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। अनेक अनेक ब्रह्मांड में भ्रमण करते 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 जिस प्रकार कभी नदी पानी की तरफ बह रहे नदी बह रहा है उसके अगर कोई लकड़ी गिर गया पानी में तो लकड़ी क्या करते है पानी के साथ बहते जा रहे। उसी प्रकार ये जो भौतिक प्रकृति है प्रकृति के गुण के द्वारा प्रकृति के तीन गुण के द्वारा जीवात्मा वो बहते जा रहे। और कभी अचानक क्या होता है कि अनुकूल हवा के वातावरण जो कि लकड़ी क्या करता है किनारे पे लग जाता है। तो इसी प्रकार कई संसार में हम भ्रमण करते 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 तो क्या होता है कभी साधु गुरु का वैष्णव का दर्शन होता है, साधु संघ प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है साधु संघ सर्वशास्त्र कहे लभे मात्र साधु संघ सर्वसिद्ध है। साधु संघ लभ्य मात्र थोड़ा सा अगर कोई हम साधु संघ करते हैं तो सर्व सिद्ध है, बोल दो आपको भगवान धाम जाने का अवसर प्राप्त हो जाता है। प्रसंगम अजरम पास आत्मय कवि विदु स एव साधु गुत्य मुख्य द्वारा अतावतम। अगर प्रसंगम अजरम पास स एव साधु गुत्य अगर साधु संघ करते हैं तो आप भगवान के धाम जाने का अवसर प्राप्त हो जाता है। तो हम देखते हैं कि ये जो शरीर है ये शरीर रथ माना गया है कि ये शरीर रथ के समान है और ये जो हमारा जो इंद्रिय है पांच इंद्रिया ये घोड़े के समान है, मैं पांच घोड़े के और लगाम है वो मन है और जो सारथी है वो बुद्धि है और जो यात्री कर रहे हैं वो जीवात्मा है। तो हम ये देखते हैं कि ये शरीर है इसीलिए कहा गया है मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ और हम अवसर मिलता है भगवान के धाम को प्राप्त करने का। और ये शरीर हम देखते हैं कि ये जो भगवद गीता है ये भगवद गीता में चित्र आप देख रहे हैं ये लगाम भगवान के हाथ में है और ये सारथी बैठे है भगवान सारथी के रूप में भगवान बैठे और जो आत्मा है जो जीवात्मा है तो बैठे रथ के अर्जुन है। तो इससे हमको ये शिक्षा मिलता है भगवद गीता अगर आप पूरा सारी आप पढ़ेंगे तो आपको एक ही चीज प्राप्त होगा कि भगवान ये 12वां अध्याय में 8 नंबर श्लोक में बता रहे मयैव मन आदित्यम मयि बुद्धि निवेशय निवेशयसि मयैव अत्र ऊर्ध्वं संशय। भगवान जिस प्रकार हमारा मन जो मन है और मन को क्या करना चाहिए भगवान को दे देना चाहिए। मय मन आदित्व मय बुद्धि निवेश है मन को भगवान को देना चाहिए और बुद्धि को क्या भगवान के विचार में हमेशा रहना चाहिए। मय मन आदित्व मय बुद्धि निवेश है निवेश शेषी मय अत ऊर्धन संशय। अगर आप मन बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाते हो तो बिना संशय रहते हो कि आप भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हो। इसे भगवान बता रहे अगर कोई बोलेगा कि मन इतना चंचल है तो मन को कैसा लगाएंगे तो आगे भगवान बता रहे क्या बता रहे अथ चित्तम समाधातु न सक्रसि मय स्थिरम। अभ्यास योग ने तत्व माम इच्छा प्राप्त धनंजय अथ चित्तम। अगर आपको मान को मुझ पे नहीं लगा सकते हो तो क्या करो, अथ चित्तम समाधातो न सुखसि मय स्थिरम। अगर मान को बुद्धि को नहीं लगा पाते तो क्या कहते हैं, अभ्यास योग ने तत्व माम इच्छा प्राप्त धनंजय। हे धनंजय क्या करो, आप भक्ति का विधि विधान का अभ्यास करो और अभ्यास करो और मुझे प्राप्त करने का इच्छा प्रकट करो। अभ्यास योग ने तत्व माम इच्छा प्राप्त धनंजय। इसीलिए अभ्यास क्या है भक्ति योग का, पहले क्या करना चाहिए, हमारा जो पांच इंद्रिय है काय न मनस केवल इंद्रिया, जो हमारा जो आँख कान जीभ त्वचा जो है तो हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। जैसा ये जो वाणी है, जो वाणी है तो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। कैसा लगाए, अगर किसी का भी वाणी कैसा भी हो अगर भगवान की हरे कृष्ण मंत्र आप गा सकते हैं, और आँख जो है भगवान के दर्शन के लिए लगा सकते हैं, जो कान है हरे कृष्ण मंत्र सुन सकते हो और भगवत गीता भागवत श्री चैतन्य चरितामृत ये प्रवचन आप सुन सकते हो, और ऐसा कार्य करने से हम जल्दी भगवान के धाम को जाने का अवसर प्राप्त होगा। जैसा अभी वाणी है का, कोई किसी का भी वाणी कैसा भी हो वो भी भगवान को भगवान का भजन कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा सिंगर बहुत सुंदर अच्छा गाता होगा वही भगवान की भक्ति कर सकता है, ऐसा नहीं है। एक बार एक कहानी बता रहा हूँ, बहुत सुंदर कहानी है महाभारत की। तो एक बार भगवान कृष्ण जब हस्तिनापुर में रहते थे उसी समय अर्जुन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का गुणगान करते थे। तो क्या गुणगान करते थे कि अर्जुन वाह गांडीवधारी कितना अच्छी तरह से युद्ध करते हो। तो फिर अच्छा से जब नृत्य करते थे तो अर्जुन का गुणगान करते थे कि कितना सुंदर आप नृत्य करते हो। और मृदंग जब हारमोनियम मृदंग बजाते थे तो हारमोनियम भी गाते थे, मतलब गीत गाते थे भगवान के भजन करते थे। तो भगवान कृष्ण ने गुणगान करते थे तो अर्जुन का, तो भीम को रहा नहीं गया, बोलते कि जब भी देखो कि जब भी देखो खेले अर्जुन का गुणगान करते हैं तो मेरा तो कुछ गुणगान करते नहीं, चलो मैं क्या करूं, मैं अभी मृदंग बजाऊंगा, मृदंग अभी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हारमोनियम सीखना पड़ेगा तो भगवान मेरा गुणगान भी करेंगे। तो हस्तिनापुर में रिसेप्शन में मतलब सामने एकदम मृदंग और हारमोनियम लेके बैठ गए और बजाने लगे एकदम, तो सबको डिस्टर्ब होने लगा अभी क्या करें। तो फिर अभी कौन बताएंगे, वो तो अजाज सर तो युधिष्ठिर महाराज तो नहीं बता पाएंगे, तो अर्जुन तो छोटे है वो भी नहीं बता पाएंगे, और नकुल से सहदेव की तो बात छोड़ दो। तो अभी क्या करें, अभी तो भगवान कृष्णा ने बोले द्रौपदी को बताए कि द्रौपदी आप ही बता सकते हैं, कि आप ही बताओ कि अभी अन्य स्थान जाके फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो द्रौपदी आए भीम के पास, बोले कि आपको डिस्टर्ब नहीं होता है, जो साधना जो भजन है ना एकांत स्थान में होना चाहिए, तो आप क्या करो एकांत स्थान में भजन करो, आप एकांत स्थान में चले जाओ और एकांत स्थान में जाके भजन करो। तो इस बात को सुने तो वाह बोले द्रौपदी बहुत अच्छी बात बताए, तो एकांत स्थान में जाना चाहिए सीखने के लिए। तो एक पहाड़ के पास गए और एक गुफा था, तो वो गुफा में बैठ कर के ना तो गाने लगे, मृदंग बजाने लगे गाने लगे। तो एक धोबी क्या करता है, उस पहाड़ के पास ना वो क्या है एक नदी है, और नदी के पास धोबी उधर ही रहता था, तो कपड़ा धोने के लिए गद्दा को लेके आता था। तो उनका गद्दा दो तीन दिन से नहीं मिल रहा था, तो जब गद्दा नहीं मिल रहा था तो उन्होंने सोचा कि अभी ये तो पहाड़ के अंदर से कहाँ से आवाज आता है, तो अभी क्या करें, अभी जाके देखना पड़ेगा अभी कहाँ से आवाज आ रहे। तो जब गए अंदर गुफा के अंदर तो भीमसेन ने बैठे थे एकदम, तो बोलते आप यहाँ क्यों आए, भीमसेन ने पूछे कि आप क्यों आए, बोलते सरकार मुझे माफ कर दो, अगर मैं बताऊंगा तो आप क्रोध नहीं करोगे ना, बोलते नहीं, बोलते मेरा दो तीन दिन से गद्दा गायब हो गया था और इसके लिए मैं देखने आया हूँ। तो भीमसेन को पता चला, अरे द्रौपदी क्यों मुझे बताया था कि आप एकांत में जाके प्रैक्टिस करना चाहिए। तो फिर तुरंत आ गए घर में, तो हस्तिनापुर में फिर वापस आ गए। तो और एक दूसरा घटना है, तो एक बार क्या हुआ भगवान युधिष्ठिर महाराज क्या बोले कि आप एक काम करो कि आप तुरंत भीमसेन को आदेश दिए कि भीमसेन आप क्या करो अभी तुरंत तुरंत द्वारिका जाओ और स्वयं भगवान कृष्ण को लेकर आओ, थोड़ा कुछ मीटिंग है। तो सुबह सुबह बोल दिए, तो अर्जुन से भीमसेन ने जब उठे तो सुबह उठने के बाद स्नान वगैरह सब कर लिए, तो फिर क्या किए कुछ खाने तो क्या है, भीमसेन बुकदर है, उनका जो पेट है मतलब है तो जलते रहता है, मतलब जितना भी खाएंगे तो उतना डाइजेशन तुरंत हो जाता है। तो क्या किए सब आके फिर उनके लिए नाश्ता वगैरह सब भोजन बनाया गया, तो फिर अच्छी तरह से पा लिए, बोलते ठीक है भगवान कृष्ण को तो बुलाना है, थोड़ा चलो खाने के बाद थोड़ा रेस्ट कर लेते। और जब रेस्ट करने गए तो क्या हुआ, पूरा शाम हो गया, भूल गए भीमसेन ने भूल गए कि भगवान कृष्ण को बुलाना है, तो भूल गए। तो उसके बाद क्या हुआ, तो भगवान फिर क्या किए कि युधिष्ठिर महाराज ने सैनिकों को भेजे कि जाके बताओ कि भगवान कृष्ण आए कि नहीं। जब भीमसेन ने जब गए कि भगवान कृष्ण आए, महाराज युधिष्ठिर पूछ रहे, तो ये बात को जब सुने तो बोले कि वो गए ही नहीं। तो उसमें बात क्या हुआ कि युधिष्ठिर महाराज ने बहुत बोले भीमसेन को कि आप इतना नालायक है, इतना बताने के बाद आप नहीं गए द्वारका। तो भीमसेन ने क्या किया बताए कि एक घर में चला गए और घर में जा करके पूरा दरवाजा बंद कर दिए, एकदम बंद करके रोने लगे, एकदम रोने लगे कि क्या, और बोले कि आप सिर्फ क्या द्रौपदी की बात सुनते, मेरे बात नहीं सुनेंगे। तो मेरे युधिष्ठिर महाराज ने मुझे आदेश दिए थे कि आपको बुलाने के लिए, तो आप तो द्रौपदी को एक बार कृष्णा गोविंद बुलाए तो तुरंत आप उपस्थित हो गए, तो आप मेरे बात नहीं सुनेंगे, सिर्फ द्रौपदी की बात सुनेंगे। तो इस बात पर देखे तो स्वयं एक सैनिक आया और दरवाजे पर खटखट किया, तो बोले कि युधिष्ठिर महाराज बुला रहे। तो अच्छा फिर देखो फिर संकट में आ गए, भीमसेन ने फिर परेशान हो गया, अभी क्या बोले अभी बड़े भाई को। तो तुरंत जब आए सामने तो भगवान श्री कृष्ण सामने बैठे थे, तो भगवान श्री कृष्ण सामने बैठे थे और युधिष्ठिर महाराज भीमसेन को बोले कि आप मुझे झूठ बोलते, बोलते नहीं भैया मैं द्वारिका गए ही नहीं, बोलते द्वारिका जाने का बात मैं तो कहा ही नहीं, द्वारिका जाने का बात तो मैं ही नहीं कहा, मैं बोला कि कृष्ण को बुलाओ, मैं बोला कि कृष्ण को बुलाओ, मैं द्वारिका जाने के लिए कहाँ कहाँ, मतलब कृष्ण को बुलाओ ये बताए। तो हम देखते हैं कि वाणी कैसा भी हो लेकिन अगर आप भगवान को भगवान पुकार सुनते, कैसा भी वाणी चाहे हो धीरे से बोलो चाहे जोर से बोलो और अच्छा से नहीं भी गा पा रहे तो ये हम शिक्षा मिलता है कि इस वाणी से हम कैसा भी वाणी हो तो हम भगवान का जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है ये एक नाव के समान है, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है ये एक नाव के समान है। और नुदेय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लब स्वकल्प गुरुकर्ण धारम, ये मनुष्य शरीर मिला है एक नाव के समान है, और नाव को कैसे पार होता है, कैप्टन के द्वारा। ये जो समुद्र अगर आपको पार करना है तो अच्छी तरह से कैप्टन होना चाहिए, तो इसी प्रकार और अनुकूल हवा भी होना चाहिए। अनुकूल हवा क्या है, वो है श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम, ये संदेश, ये जो सारे शास्त्र है अनुकूल हवा के समान है। तो गुरु और भगवान की कृपा के द्वारा यह हम भवसागर को पार कर सकते हैं, जैसा श्रील प्रभुपाद ने बहुत परिश्रम करके हम सबको भगवद गीता श्रीमद् भागवत, आज हम देखते हैं कि सारे विश्व में भगवद गीता का प्रचार हो रहा है, 80 से अधिक भाषा में भगवद गीता से प्रचार हो रहा है, चाइना रूसिया सब अलग अलग भाषा से प्रचार हो रहे हैं। तो ये एक मिला है मनुष्य शरीर अवसर, अगर इस शरीर से अगर हम भगवान के भजन नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसको अगला शरीर प्राप्त होगा, तो अगला शरीर की प्राप्त होगी फिर अलग अलग जोनी फिर भ्रमण करना पड़ेगा। इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर से भगवान की भक्ति करना चाहिए। इसलिए हम ये आगे हम देखते हैं जो एक दूसरा अध्याय के 31 नंबर से 37-39 तक ये स्वधर्म के बारे में बता रहे हैं अर्जुन को, कि अर्जुन को ये बता रहे कि स्वधर्म चप्यापेक्ष ना विकम्पि तुम्हारसी धर्मात उदात श्रेय न अन्य क्षेत्र से न विद्यते, कि अगर आप स्वधर्म है, आपका जो धर्म है क्षेत्र का धर्म है युद्ध करना है, अगर युद्ध अगर नहीं करते हो तो क्या होगा, आपको पाप लगेगा, अगर युद्ध नहीं करते हो इसलिए आपको पाप लगेगा, इसलिए आप क्या करो, आपका धर्म है युद्ध करना है इसलिए आप युद्ध करो। तो भगवान स्वधर्म के बारे में बता रहे, बताया गया कि जैसा ब्राह्मण का क्या धर्म है, यज्ञ करना और दूसरे को ज्ञान प्रदान करना, ये ब्राह्मण का कार्य है। और एक ब्राह्मण क्या करता है कि बड़े बड़े यज्ञ करता है, और यज्ञ में आहुति क्या देते हैं, जो वृद्ध गाय होता है नहीं तो घोड़े होते हैं वृद्ध, तो उसको आहुति में दिया जाता है, लेकिन उसका जो आहुति में दिया जाता है तो उनको पाप का कर्म नहीं भोगना पड़ता है, क्योंकि जब वो ऐसा कार्य किया जाता है आहुति दिया जाता है तो उसके जब अग्नि से जवान घोड़ा निकालता है नहीं तो जवान बछड़े निकालता है, तो और इसके द्वारा क्या होता है तो उसका बिना परिवर्तन किए होते उसको अगला शरीर से मनुष्य शरीर का जन्म प्राप्त हो जाता है, तो इसीलिए उसको आसान होता है। उसी प्रकार क्षेत्र का धर्म क्या है, युद्ध करना, और युद्ध में अगर कोई आदमी मर जाता है हतोबा प्रासी स्वर्ग जितोबा भुक्षे से माइम, अगर युद्ध में कोई अगर शरीर छोड़ता है तो उसको आसानी से स्वर्ग प्राप्त हो जाते हैं, अगर जीत जाता है। इसमें भगवान ये बताना चाह रहे कि अगर आपके पास दोनों है, आपके पास दोनों है, अगर युद्ध में मार जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और युद्ध में अगर जीत जाओगे तो भुक्षे से माइम और शारीर राज्य का साम्राज्य भोग करेगी। तो इसलिए कहा गया कि जो चार वर्ण चार आश्रम है, अतो पुंबी द्विज श्रेष्ठ वर्ण आश्रम विभाग, चार वर्ण और चार आश्रम है, सनिष्ठ तस्य धर्म से सम सिद्धि हरितोषणम, ये क्या है, ये चार वर्ण चार आश्रम इसलिए बनाया गया है कि इसके द्वारा भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है, इसलिए ये आत्मविद्या है, जो भगवद गीता है आत्मविद्या है। ये कहा गया है कि भगवद गीता में पांच विषय पे चर्चा किया गया है, ईश्वर जीव प्रकृति काल और कर्म, भगवान के बारे में बताया गया है और जीव के बारे में बताया गया है, जीव के जीव और भगवान के साथ क्या संबंध है, संबंध अभिदय और प्रयोजन, जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, भगवान श्री कृष्ण की जीव कैसा भगवान की सेवा करेगा इसके बारे में ये गीता बताया गया है, गीता भागवतम, और प्रकृति के बारे में बताया गया है, और प्रकृति काल और कर्म, ये पांच विषय के ऊपर बताया गया है, और अभिदय है संबंध, अभिदय, अभिदय क्या है, साधन है, भगवान किसको कैसा प्राप्त करे उसके लिए साधन है, जो श्रवण कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दासनम साख्यम आत्म निवेदनम इति पुंसा पिता विष्णु भक्ति से न लभ्य लक्षण। तो ये जो है जो नौ प्रकार की भक्ति है, पहला क्या है, श्रवण करना, ये जो भगवद गीता है ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया, भगवद गीता का ज्ञान, ये श्रवण के द्वारा हम असली ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। असली ज्ञान क्या है, असली ज्ञान ये है कि हम भगवान के नित्य सेवक हैं, और ये जानना चाहिए कि असली ज्ञान ये है कि भगवान ने बताया कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये पहले मुक्ति मार्ग के लिए ये पहले सपान है, जब आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो तो ये पहले मन में ये विश्वास होना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और हम शरीर तो नष्ट होता है लेकिन जो आत्मा है वो नष्ट नहीं होता है। इसलिए कहा गया सबे पुंसा पर धर्म ये तो भक्ति अधोखे अहत क्या अप्रत्यता ये आत्मा से प्रसिद्ध थे, सबे पुंसा पर धर्म, सारी जो जितना भी धर्म है तो क्या है, सबे पुंसा पर धर्म, असली धर्म के भगवान अधोखेज कृष्ण की भक्ति करना, और वो भक्ति क्या है, अहुत कहना चाहिए। एक बार भगवान नरसिंह को प्रसन्न करने के बाद प्रहलाद महाराज ने, तो भगवान नरसिंह बोले कि प्रहलाद महाराज और आपको मैं कुछ बर देना चाहता हूँ, आपको कुछ मैं बर देना चाहता हूँ, आप मांगिए बर। तो ये बर मांगे थे, क्या वर मांगे थे कि पहली बार तो ये मांगे थे कि मेरे कोई भौतिक इच्छा ना हो, कि मैं संसार में कैसे कुछ भौतिक इच्छा ना हो रहा। और दूसरा बार क्या मांगे थे कि मैं किस प्रकार भगवान की अधोगज की भक्ति अहुत की भक्ति, अभी मैं जो आपके भजन किया हूँ उसके लिए मेरे को कुछ नहीं चाहिए, अहुत की भक्ति चाहिए, अकारण अहुत की भक्ति, पूरा कुछ नहीं चाहिए, कोई बैंक बैलेंस घर संपत्ति। अगर आप भगवान, इसलिए भगवद गीता में भगवान बता रहे चतुर्वर्ण माया सिस्टम गुणा कर्म विभाग, चार वर्ण चार आश्रम के द्वारा ये गुण कर्म के हिसाब से ये बनाया गया है। इसलिए भगवद गीता में भगवान बता रहे कि मेरे पास चार प्रकार के भक्त मेरे शरण में आते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति मजना, जैसे अर्थ अर्थाति जिज्ञासु ज्ञानी, कुछ धन के इच्छा से भगवान के पास आते हैं, जैसा ध्रुव महाराज ने तपस्या करने के लिए गए थे भगवान को प्राप्त करने किए और उनको भगवान ने दिए, ध्रुवलोक प्राप्त हुआ, द्रौपदी कुछ कष्ट में थे तो द्रौपदी ने प्रार्थना की थी तो भगवान ने ऐसा रक्षा किया। और जिज्ञासु ज्ञानी, जो ज्ञानी जो सुखदेव गोस्वामी और सनत कुमार ज्ञानी और जिज्ञासु के सनकादि ऋषि, जितना भी 88,000 जो ऋषि थे सनकादि ऋषि, तो ये बताया गया कि कलयुग में बहुत सुंदर साधन है, आसानी से आप भगवान के धाम प्राप्त कर से। कले दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुणा, कीर्तन देव कृष्ण से मुक्त संग्रह परम भजे। ये कलयुग में अगर आप जहाँ भी देखो दोष ही दोष दिखाई देगा, जहाँ भी देखो झगड़ा कली मारपीट ये सब दिखाई देगा, लेकिन सबसे महान है कि भगवान श्री कृष्ण की नाम का कीर्तन। जब परीक्षित महाराज नाम पहला स्कंद में देखते हैं, जो परीक्षित महाराज ने कली को स्थान दिया था, धूतम पान स्त्री सुना यह धर्म चतुर्विध, चार स्थान दिए कलियुग को रहने के लिए परीक्षित महाराज ने। कलियुग ने परीक्षित महाराज में शरण में आके प्रार्थना किए थे कि मुझे स्थान दीजिए, मैं कहाँ रहूं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जाने के बाद द्वापर युग के बाद कलियुग प्रारंभ हो रहा है, तो मेरे को स्थान बताए। उसने बताया थे धूतम पान स्त्री सुना यह धर्म चतुर्विध, धूतम पान स्त्री सुना, धूतम जुआ खेलना दारू पीना, धूतम पान स्त्री सुना अबाध्य स्त्री संग और सुना और ये पशु हत्या, तो इसके रहने के लिए कलयुग को ये स्थान दिया गया है। अगर हम इस चार स्थान से बच करके भगवान हरि का नाम जप करते तो आसानी से हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। धूतम पान स्त्री सुना यह धर्म चतुर्विध, तो ये बताया गया कि जब परीक्षित महाराज ने कली को ये स्थान दे रहे थे तो परीक्षित महाराज को बहुत संतोष हुआ कि कलियुग में जो भी मन में पाप के विचार करते हैं उसको पाप नहीं लगता है, कलियुग बहुत अच्छा है क्योंकि देवता लोग चाहते हैं कि कलियुग में जन्म ले और अच्छा से भगवान के धाम को सरलता से प्राप्त करे। कलियुग में इतना आसान से भगवान के धाम, जिस प्रकार देवता का शरीर प्राप्त करना तो अच्छा है, लेकिन जिस प्रकार कभी कभी नीच जाति को आरक्षण की सुविधा किया जाता है, नीच जाति जब रहता है छोटे जाति तो उनको आरक्षण की सुविधा किया जाता है, उनको राइस दाल सब अलग अलग सब चीज सुविधा किया जाता है, लेकिन अगर बड़े जो है ब्राह्मण वगैरह सब तो सोचते हैं कि अगर हम भी नीच जाति में जन्म मिल जाता तो हमको ये सब मिल जाता आसानी से। तो ये देवता का शरीर मिला ये अच्छा है, लेकिन जो सरलता से जो प्राप्त होता है वो कलियुग में प्राप्त होता है भगवान के धाम, सरलता से आसानी से भगवान के धाम। जब परीक्षित महाराज ने कलियुग को स्थान दे रहे थे तो कलियुग हंस रहे थे, तो क्या हंस रहे थे, ये हंस रहे थे कि जो आपके मन में जो मानसिक जो चेतना है, जो अभी सोच रहे हो कि आसानी से आप भगवान के धाम प्राप्त करोगे तो ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं कलियुग में करने दूंगा तब करोगे ना, तो मैं ऐसा उनको माया में फंसाऊंगा तो ये कर नहीं पाएंगे। आजकल देखते टीवी मोबाइल सब आ गया तो इसलिए करने बात है, तो इसीलिए तो ये कलियुग में भी भगवान हरि का नाम जप करना इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए जब हम साधु संग में आते हैं, साधु के साथ बैठते हरि कथा करेंगे तो आसानी से आप भगवान के धाम जाने का अवसर प्राप्त होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय।